जो सोचना है बैठकर उसका ये सिलेबस इस वक्त के लिए समझिए।
एक कुछ है संगठन के संबंध में और कुछ धर्म और जाति के संबंध में, ये तीन, और चौथा मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो मराठवाड़ा में विवाद पिछले दिनों हुआ था उस संदर्भ में कुछ सवाल। स्त्री पुरुष आजीवन के संबंध में तीन सवाल हैं। पहला है, स्त्री और पुरुष के बारे में आपका क्या विचार है? स्त्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, सहजीवन कैसे रीत से जी सकते हैं, किस तरीके से जी सकते हैं? तीसरा, सहजीवन क्या स्वच्छंदता है? संपूर्ण क्रांति के संगठन के संबंध में सवाल, पहला सवाल है, हम अभी देख रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति के लिए समर्पित युवा संगठन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी भी अभी एक ढांचे में बंद होता चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में वे युवक युवतियां जो एक ढांचे में बंधना नहीं चाहते हैं, वे क्या करें? दूसरा सवाल, हम देख रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति का शैक्षणिक कार्य करते किसी संस्था या संगठन के नियमों और बंधन सही शिक्षण देने में बाधक बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक जरूरियात को के लिए वह संस्था पर निर्भर रहना उचित है? नहीं है तो क्या करना चाहिए? तीसरा, व्हाट इज द रोल ऑफ यंग जनरेशन इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज योर काइंड ओपिनियन ऑफ लव एंड फ्रीडम इन लार्ज एस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन क्रिएचर? दूसरा, व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन फॉर 20 ईयर्स आगे के शब्द है भाई, जी आई एम ई क्या है जिसमें नहीं आ रहा है, इसका ये प्रश्न है भी अभी बता दें। फॉर व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन फॉर 20 ईयर्स डेमोक्रेसी? मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नामांतरण के बारे में आपका विचार क्या है? मराठवाड़ा में हुई हिंसा में आरएसएस तथा दलित पैंथर ने जो भूमिका अदा की वह कहां तक उचित है? प्रस्तुत समस्या का हल कैसे किया जाए? गांधी जी इस देश के विभाजन को रोक क्यों नहीं पाए? जातिवाद को निर्मूल करने के उपाय क्या हैं? अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन क्यों किया? फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल के संबंध में आपका अभिप्राय क्या है? जबकि सभी जातियों एवं धर्मों का उद्देश्य एवं लक्ष्य एक है, मोक्ष की प्राप्ति, परंतु आज के इस क्रांतिकारी इरा में वह सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं? कृपया हमें वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं। क्या इन दंगों का निवारण है, आप बताएं, तो इसमें मानव की क्या भूमिका हो सकती है? कृपया सही मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें ताकि हम प्रयत्नशील बने अपने उत्तरदायित्व को निभाने में।
और यह मैं बहुत गंभीरता से सीरियसली कहना चाहता हूँ, अब दूसरे का दिखाया हुआ मार्ग काम नहीं आएगा। आपको बैठकर मार्ग बनाना होगा, मार्ग बतलाने वाले नहीं, मार्ग बनाने वाले चाहिए। बने बनाए रास्तों से, बने बनाए मुकामों पर आदमी पहुंचता है। रॉयल रोड लीड टू ओल्ड डेस्टिनेशन विच इज नॉट अवर गोल। You will have to explore new footpaths, and this is your job, not mine. I can only help you to explore. तो पहला सवाल तो ये स्त्री पुरुष के बारे में है. इसके बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ, बहुत लिख चुका हूँ और अब थक भी गया हूँ. थक इसलिए गया हूँ कि न पुरुष मेरी बात मानने को तैयार है, न स्त्री मानने को. कोई लड़की कोई लड़का मानने को तैयार नहीं. सहजीवन इस देश के लिए पहला मंत्र है. सहजीवन टुगेदरनेस इज अवर सुप्रीम नेसेसिटी ऑफ द टाइम, नॉट को एग्जिस्टेंस. वी हैव हैड इनफ ऑफ को एग्जिस्टेंस, इनफ एंड इनफ ऑफ इट. वॉट वी नीड इज लिविंग टूगेदर. देर आर टू काइंड ऑफ नेबरलीनेस. पड़ोसी है दो तरह की होती है. एक का नाम है को एग्जिस्टेंस, लिविंग एंड लेट लिव. लिव एंड लेट लिव, दिस इज को एग्जिस्टेंस. जहां आज राष्ट्र पहुंचे हैं, नेशंस टूडे आर ट्राइंग टू अराइव एट दिस कंसमेशन. लिव एंड लेट लिव, नॉन इंटरफियरेंस. द कास्ट सिस्टम वॉज परहैप्स इवॉल्व्ड विथ ए व्यू टू इनेबल पीपल टू लिव साइड बाय साइड बट नॉट टूगेदर. ये नेबरलीनेस का एक एस्पेक्ट है. इसका सूत्र क्या है? गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर. मेरी हद और आपकी हद अगर तय हो जाए तो हम अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं. चीन के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट तय हो जाए, बांग्लादेश पाकिस्तान सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट तय हो जाए, तो वी शैल बी वेरी गुड नेबर. वेरी गुड नेबर्स का मतलब यह है, आई शैल लिव माई लाइफ, यू विल लिव यूर लाइफ एंड वी विल हैव नथिंग मोर टू डू विथ वन अनदर. ऑल रिलेशनशिप विल बी रिगार्डेड एज इंटरफियरेंस. दिस इज वॉट इज नोन एज ए क्लोज सोशल ऑर्डर. A closed society which has no outlets in their walls. Neighbors have no windows, not even windows, let alone doors. ऐसा caste system है. तो स्त्री पुरुष का सहजीवन एक अलग चीज, उसमें living together होना चाहिए. तो ये अब किस नाते? अब तक स्त्री पुरुष का सहजीवन किस नाते हुआ है? माँ बेटे के साथ रही, भाई बहन के साथ रहा, बेटी बाप के साथ रही है और पत्नी पति के साथ रही है. ब्लड रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, यौन संबंध और रक्त संबंध, दो ही संबंध स्त्री पुरुष के अब तक रहे हैं. क्या इनके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष का कोई संबंध हो सकता है? दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. एंड नॉट इवन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म हैव बीन एबल to answer this question in actual life. So in total revolution we have to find out whether man and woman can live together, not side by side, without the relationship of blood and sex. As friends, as comrades. हर ये तो प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, इससे हर चीज को बढ़ाऊंगा नहीं. अब आप इनको समझिए, सोचिए, आप इसका अध्ययन कीजिए जो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। मैं थोड़े थोड़े में इनिशिएट करते चला जाऊंगा। मैं क्या चाहता हूँ, ए वूमन शुड बिकम अ ह्यूमन बींग एन इक्वल मेंबर ऑफ सोसाइटी, सिटीजन ऑन एन इक्वल फूटिंग विथ मैन, मैन्स पीयर इन एवरी रिस्पेक्ट। वो मनुष्य के नाते पुरुष की बराबरी से रहे। अब बराबरी का अर्थ पुरुष बने नहीं, शी विल नॉट कन्वर्ट हरसेल्फ इंटू काउंटर फीट मैन। वो ही वूमन नहीं होगी और ये शी मैन नहीं होगा। फिर भी वो दोनों एक दूसरे के गुण शेयर करेंगे। दे विल शेयर ईच अदर्स एक्सीलेंसेस। दी एक्सीलेंसेस ऑफ वूमन एंड मैन आर कॉम्प्लीमेंटरी। दे फुलफिल ईच अदर। तो अब तक क्या कहा, किसी लड़के से मैं कहूं कि तुझे तुझमें लड़की के बहुत से गुण हैं तो एकदम नाराज हो जाएगा, लड़ाई करेगा। और किसी लड़की से कहूं कि तुझमें बहुत से लड़के के गुण हैं तो कुछ अकड़ कर चलने लगेगी कि ठीक ही है, तारीफ कर रहा है। लेकिन लड़के से आप कहिए कि तुम्हारी माँ के बहुत से गुण तुम में आ गए हैं, बड़ा खुश होता है। शिवाजी भी खुश होता है, गांधी जी खुश होता है, विनोबा भी खुश होता है, क्योंकि उसकी माँ स्त्री है ही नहीं, रोल बदल गया। शैल वूमन हैव ए रोल एज ए ह्यूमन बींग, एज ए ह्यूमन मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये मैं चाहता हूं, स्त्री के विकास की यह शर्त है कि लड़के का डर ना हो लड़की को, और लड़की को तंग कराने करने का मोह लड़के को ना हो। फ्रेंड, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। दिस इज नाइदर होम नॉर इंस्टीट्यूशनल लाइफ। ये फैमिलियल सोशल ऑर्डर भी नहीं है और इंस्टीट्यूशनल सोशल ऑर्डर भी नहीं है, ये स्ट्रीट कॉर्नर का सोशल ऑर्डर है जहां हर लड़का ईविंग करता है और हर लड़की दबक दबक कर शर्मा शर्मा कर चलती। दिस इज एब्सोल्यूटली ए सैवेज बारबरस सोसाइटी, नो कल्चर। What we want is not a street corner society. हर स्ट्रीट कॉर्नर पर पुल पर कॉलेज के लड़के बैठे हुए हैं, लड़कियां वहां से निकलने में डर रही हैं। अब आपको मालूम है वेस्ट जर्मनी में या ईस्ट जर्मनी, मुझे ठीक याद नहीं, एक शहर में स्त्रियों ने मांग की है कि शाम के बाद सड़कों पर पुरुषों का आना बंद कर दिया गया और क्यों कर दिया जाए, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द डे इज वन रेप इन एवरी 13 मिनट। अब ये फ्री सोसाइटी नहीं। मुझसे पूछा है कि फ्री सोसाइटी क्या है। ए फ्री सोसाइटी इज ए सोसाइटी इन विच ए मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज नेबर, नॉट ओनली अफ्रेड बट नॉट इवन सस्पिशियस, बिकॉज यूअर नेबर इज यूर को ट्रेवलर, यूअर को पिलग्रिम। तो इसमें से क्या आएगा, टेक्सचर क्या होगा सोसाइटी, व्हाट विल बी द बेसिस। इस सोशल ऑर्डर का बेसिस होगा म्यूचुअल अफेक्शन एंड ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए प्रेम और विश्वास, लस्ट नहीं, काम नहीं। लस्ट इज एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक फील्ड में उसका नाम एक्सप्लॉइटेशन है, और सोशल रिलेशनशिप में उसका नाम इमोरालिटी है। लस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लव। लव डज नॉट प्रिक्लूड सेक्स, लव में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकती है लेकिन वो काम नहीं है, वो एक दूसरे को विषय नहीं मानता, ऑब्जेक्ट नहीं मानता है, एक शरीर दूसरे शरीर का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब इसको बहुत नहीं समझा सकता क्योंकि एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश की। मैन एंड वुमन विल बी कॉम्प्लीमेंटेड एंड नॉट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो मैंने सवाल और तो कुछ रहा नहीं, उनका पहले ले लूं, ठीक है। अब ये इसमें एक आखिरी सवाल है, उसी में से उस पर चले जाएंगे। क्या सहजीवन स्वच्छंदता है? तो सहजीवन स्वच्छंदता में से क्या कभी सहजीवन आ सकता है? स्वच्छंदता दो के मिलकर हो सकती है क्या कभी? मेरी स्वच्छंदता और आपकी स्वच्छंदता, ये दोनों साथ साथ चल सकेंगे? इसको सोचिए थोड़ा गहराई से। जिस वक्त जो मैं चाहता हूं उसी वक्त वो आप चाहें, ये हो सकता है? अब इस वक्त मैं चाहता हूं कि घूमने चला जाऊं और मेरी पत्नी या मेरा दोस्त चाहता है कि ये वक्त घूमने का ही है, दूसरा काम करना है, तो स्वच्छंदता नहीं हो सकती है। कोऑपरेशन क्या, टुगेदरनेस मीन्स कोऑपरेशन, एंड कोऑपरेशन विच इज कौन के लिए, दोनों का सहयोग जो स्वयं प्रेरित होगा। तो मेरी स्वच्छंदता आपकी स्वच्छंदता से मर्यादित हो गए और आपकी स्वच्छंदता मेरी स्वतंत्रता से, मेरी स्वच्छंदता से मर्यादित हो गई। रिलेशनशिप लिमिट्स लाइसेंस। इसमें कोई पुस्तक की जरूरत नहीं है, किसी गीता की नहीं, कुरान की नहीं, कुछ नहीं। लोग एक दूसरे के साथ रहना सीखे। अब ये जाति संस्था ने नहीं किया। मैंने सवेरे आपसे कहा था कि हमारे देश में दो तरह के डिनोमिनेशन हैं, दो तरह के संगठित धर्म हैं, संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय वो है जो दूसरों को अपने में मिलाना चाहता है, और दूसरा संप्रदाय जो असल में संप्रदाय नहीं है क्योंकि जातियां हैं। जाति और संप्रदाय में फर्क मैंने बतला दिया सवेरे। जाति में कोई दाखिल नहीं हो सकता, संप्रदाय में दाखिल हो सकते। तो संप्रदाय एकोमोडेटिव है, इंक्लूसिव है, वो दूसरे का समावेश करता है, और जाति एक्सक्लूसिव। अब ये होते हुए भी हिंदू क्या समझता है कि मैं उदार हूं। उदार क्यों हूं? दूसरे को अपने में शामिल नहीं करता, नॉन एग्रेसिव हूं। बट द हिंदू इज नॉट रियली नॉन एग्रेसिव बट इनटॉलरेंट, एक्सक्लूसिव है वो। ब्राह्मण अपने साथ दूसरे को नहीं बैठाता और उससे कहता है कि मैं तुझे अशुद्ध मानता हूं, तू भी मुझे अशुद्ध मान सकता है, तुझे स्वतंत्रता है। वह अंतरचिन्ह से कहता है कि तू मुझे अंतरचिन्ह समझ, मैं तुझे अंतरचिन्ह समझता हूं। मतलब इतना ही है कि मेरे नजदीक मत आ। तो ये जो एक्सक्लूसिवनेस है, अस्पर्श भावना, जिसमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज कॉन्टेजियस, मनुष्य का स्पर्श ही संसर्ग है, वो जाति है। अब ये दो तरह के हैं ना, एक मुसलमानों का हुआ, मुसलमान यानी सब जितने ये एग्रेसिव हैं कल्चर, ये सब एग्रेसिव। एग्रेसिव क्यों हुए? इंक्लूसिव हैं, इसलिए दूसरों को अपने में शामिल करना चाहते हैं। अब यहां जिसके लिए जाति में रहना मुश्किल है, असंभव है, वो क्या करे? जाति बदल तो नहीं सकता है, तो वो करे क्या? उसके लिए कौन सा रास्ता? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि मैं बंदी हूं। अब मैं बंदी नहीं रहना चाहता तो और कुछ तो बन सकता नहीं। पेशा बदल दूं तब भी भंगी ही रहता हूं, जूते की दुकान खोलूं तब भी ब्राह्मण रहता हूं, और स्कूल में पढ़ाऊं तब भी चमार रहता हूं। क्योंकि जाति का संबंध है जन्म, तो क्या मेरे सामने रास्ता है? जाति छोड़ने का एक ही रास्ता है कि समाज छोड़। किसी लोगों ने इसे धर्मांतर कहा है, धर्म परिवर्तन कहा है। असल में यह धर्म परिवर्तन नहीं है, समाज परिवर्तन है। सवेरे की मेरी बात याद रखिए, communal religion. I change my community and not essentially my religion. लेकिन अब क्या हुआ है उसको अभी छोड़ दें, सिर्फ उल्लेख कर देता हूं कि समाज छोड़ने पर भी जाति नहीं छूटती है, ऐसा हमारे देश में अब दिखाई दे रहा है। नवबुद्ध भी कहते हैं कि हम अब भी अछूत ही हैं, ईसाई जो अछूत हुए वो भी अछूत ही रह गए, जो अछूत सिख हुए वो भी अछूत ही रह गए। अम्बेडकर का जब आप विचार करते हैं तो आप ये सब ध्यान में रखिए, वो मुसलमान नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? कि जो मुसलमानों के अलावा दूसरे हैं वो सारे के सारे काफिर माने जाते हैं। द नॉन मुस्लिम्स आर नॉन बिलीवर, ऐसा हो जाता है ना। तो ये एक इनटॉलरेंस आ जाती है। समानता तो है, मुस्लिम समाज में दाखिल हो जाता है लेकिन दूसरे समाजों को वो पापी समझता है, एक कारण। दूसरा कारण, मुसलमान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। अभी से भी समझ लीजिए ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का क्या मतलब। भारत में रहने वाला मुसलमान अरबस्तान के मुसलमान को यहाँ के हिंदू से अधिक नजदीक मानता है। भारतवर्ष के हिंदू से अरबस्तान का मुसलमान उसके लिए अधिक नजदीक। तुर्कस्तान का मुसलमान उसके लिए ज्यादा नजदीक है। इसका नाम है पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म विश्व मुस्लिमवाद। अब हमारे यहाँ विश्व हिंदू परिषदें भी शुरू हो गई हैं, ये सब जवाबी कार्ड है। लेकिन पैन मुस्लिम पैन इस्लामिक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है और अम्बेडकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आदमी नहीं था, क्योंकि उसका कोई रूप इस देश के बाहर था ही नहीं, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ईसाई क्रिश्चियन नहीं हो सकता था। क्यों? क्रिश्चियंस में कलर वार है, गोरे और काले का फर्क है। अमेरिका में तो था ही, इंग्लैंड एक देश था जहां यह कभी सवाल नहीं आया, लेकिन अब यह सवाल इंग्लैंड में भी आ रहा है। इसका कारण हम भारतीय लोग हैं जो अब इंग्लैंड को अपनी कॉलोनी मानने लगे हैं उपनिवेश, और वहां भीड़ करना शुरू कर दिया अपने ढंग से, तो बेचारे परेशान हो गए। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ये कलर डिस्क्रिमिनेशन है, नीग्रो और व्हाइट, इसलिए क्रिश्चियन भी नहीं हो सकता। दूसरा कारण, क्रिश्चियन होने के बाद भी अछूत अछूत रह जाता है। सिख भी नहीं हो सकता क्योंकि सिखों में अछूत है, असल में होने नहीं चाहिए लेकिन अछूत है। तो ये तीनों गए, मुस्लिम नहीं हो सकता था, ईसाई नहीं हो सकता था, सिख नहीं हो सकता था, जैन नहीं हो सकता था। अब जैन में तो बड़ी मुश्किल है ना, आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैनों ने सरकार से कहा था, दरख्वास्त की थी कि हम हिंदू नहीं हैं इसलिए अछूत हमारे मंदिरों में नहीं आने चाहिए। मंदिर प्रवेश तो हिंदुओं के लिए है, ये अछूत तो सब हिंदू हैं, ये जैन मंदिरों में इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये जैनों की हालत। अब बचा कौन सा? केवल बौद्ध धर्म बचा जो इस देश में शेष नहीं रह गया, इसलिए उसने सेफेस्ट यह समझा कि बौद्ध बन जाओ। अब दो चीजें आपके ध्यान में आएंगी, एक आंबेडकर अछूत था, अपनी जाति नहीं बदल सकता, जाति छोड़ने का एक ही उपाय था, हिंदू समाज को छोड़ दो। तो क्या किया उसने, वो बौद्ध बना, बहुत विवेक किया, बहुत सोच विचार कर उसने ये निश्चय किया कि बौद्ध बन। अब इसी के साथ साथ मराठवाड़े का सवाल है, आप इसको सोचिए, मेरी राय पर आप मत चलिए। मांग क्या है कि मराठवाड़े के विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए, आंबेडकर का नाम रखा जाए। अब मैं ये अपने से पूछता हूँ कि इसमें नुकसान क्या है? क्या खोएगा कोई? थोड़ा सा अछूतों का अहंकार इंफ्लेट होगा, क्योंकि इंफ्लेट भी हड्डी को एलिफ्लेट, तो हमारे तो सबके इको जिसके जितने इंफ्लेटेड हैं गुब्बारे बन गए हैं, थोड़ा इंफ्लेट हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल डिफ्लेटेड था, जिसकी अस्मिता में से सारी हवा निकल गई थी, बिल्कुल सिकुड़ गई थी, सिमट गई थी, उसकी अस्मिता अगर थोड़ी फूलती भी है तो कौन सा नुकसान, थोड़ा फूलने भी। लेकिन एक बात आप खूब समझती कि जिनमें शक्ति होती है वो उन लोगों को जीने देते हैं जो उनके भरोसे जीते हैं, और तब तक उदार भी रहते हैं। स्त्री जब तक पुरुष के भरोसे जीते थी, पढ़ती थी उसके भरोसे, प्राइम मिनिस्टर बन गई उसके भरोसे, मिनिस्ट्री में शिक्षण संस्था में प्रोफेसर बन गई उसके भरोसे, तब तक वो बड़ा खुश हुआ कि तो मेरे भरोसे है, बहुत अच्छा ही है। लेकिन जिस दिन उसकी अस्मिता थोड़ी जागृत होने लगी, जिस दिन से उस दिन की फिर एडिशन की पर चला गया। अब बचाव के पैदरे पर खड़ा हो गया, अरे ये तो कुछ अब मगरूर हो गई, ये ठीक नहीं, अब तक मैं अपने नौकर को अपने साथ भोजन के लिए लेकर बैठता हूँ और वो बहुत कृतज्ञ रहता है, ग्रेटफुल रहता है, तब तक मेरा भी अहंकार थोड़ा सा कुछ कुछ आता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो मेरी टेबल में बैठ कर सिगरेट पीने लगता है, अरे ये तो भाई और दूसरा मेरी बराबरी का आदमी अमेरिका से लौटा हुआ मेरे टेबल पर बैठ कर मेरी टेबल पर बैठ कर शराब भी पी लेता है, तो आप देखते हैं ना कि हमारा माइंड ऐसा बन गया। नींद के विषय में और अछूत के विषय में हमारा हमारी एक साइकोलॉजी, इसलिए गांधी ने कहा अस्पृश्यता निवारण काफी नहीं है, स्पर्श भावना होनी चाहिए पॉजिटिव। नॉट द रिमूवल ऑफ अनक्रेटिविटी बट द फीलिंग ऑफ क्रेटिविटी। मनुष्य का स्पर्श पवित्र है और इसको एक्सटेंड हम स्त्री पुरुष रिलेशनशिप जब करेंगे, माँ का स्पर्श कितना पवित्र है उतना सारी स्त्रियों का स्पर्श पवित्र है, मेरी अपनी पत्नी का भी, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ। और सारे पुरुषों का पवित्र है, अब देखा ना आपने ये निबर में कैसा चला। तो जाति ने क्या किया, हमको एक दूसरे के साथ रहना नहीं सिखाया, एक दूसरे की अगल बगल में रहना सिखाया। बीच रहेगी मेरी बीच आपकी तरफ, आप रगड़ेगी लेकिन अभी मुकता करेगी, तो अब मैं थोड़ी आशा है क्योंकि ग्रैपलिंग होने लगा है, उसकी के लिए भी छाती से छाती मिलानी पड़ेगी। तो कुछ नजदीक आ गए हैं तो छाती से छाती लगा दी, संघर्ष की संघर्ष वाली नियम वगैरह बनी है, उसको ये सीखना चाहिए कि संघर्ष भी बगैर भिड़ंत के नहीं। देर इज नो रेस्ट इन अनलेस यू एम्ब्रेस वन अनदर। तो ये मनुष्य का स्पर्श पवित्र माना जाए, ये अगर होगा तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा। उस दिन के बारे में मेरा पूछा गया है, उस दिन को मैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसका जो आपत्तिजनक हो, लेकिन इस समय उसकी आवश्यकता इन अपॉर्चुनिटी समाज ही नहीं होना चाहिए धर्म का, ये संकल्प आप लोग की वहां के राष्ट्रीय के सम्मेलन में विनोबा ने जो अच्छी भाषण किया बहुत छोटा था, मैं एक बात कही, अब इस देश में कोई बच्चा हिंदू मुसलमान पैदा नहीं, माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो हिंदू मुसलमान नहीं पैदा। ये संकल्प आप लोग कीजिए, तो ये तो मराठवाड़ा की हो गई, अब दूसरी एक सवाल जिले में जितने सवाल आते हैं उसको सोच देता हूँ। रिजर्वेशन की बात इसका क्या उपाय है जल गया जो के स्वास्थ्य में घंटी बची है स्वास्थ्य में उपाय बचा सकते आप जब पढ़े लिखे लोग हैं तो चले जाएगा ना तो उतना चलेगा ऐसा मान कर मैं अब उसको क्लोज कर रहा हूँ क्लोज करते करते उतना वक्त तक जाए उपाय यह है कि सवर्णों को सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना चाहिए इसका नाम है गांधीयन टेक्निक जिन्हें से कहा कि पाकिस्तान मत मांग हिंदुस्तान के यू पुट द एडवर्सरी ऑन इट ऑनर सत्याग्रह का टेक्निक बार्गेनिंग नहीं सरेंडर और ये सरेंडर क्यों कहता हूं जो सवर्ण है जो खास ये सारे के सारे इनके पास शक्ति संख्या है साधन पावर ऑफ नंबर एंड द मीन सिंथेसाइज पावर ये दोनों ये सवर्णों के पास देयर इज नो डेंजर ऑफ देयर लूजिंग एनीथिंग लेकिन ये हो क्या गया है कि डिफेंसिव पर चले गए वो अछूत थोड़े ऊपर आने लगे या घबरा गए सवर्णों की जो एटीट्यूड है इसका जो आज इनका रुख है ये पैनिक का है घबराहट का इसमें से हिंदू समाज में शक्ति कभी नहीं आई आप खूब समझ आपके पास नंबर्स हैं साधन हैं यू कैन क्रश देम लेकिन इसमें से हिंदू समाज का विकास सांस्कृतिक और अन्य प्रकार ये इसका एक ही उपाय है इन रिजर्वेशन में हम कॉम्पिटिशन मैंने ये बात दक्षिण के ब्राह्मणों से गांधी हत्या के वक्त कही पहले भी कहा था लेकिन उस बात दोहराया और सबसे दोहरा कह रहा हूं लेकिन ब्राह्मण है जरूरत से ज्यादा दिमाग है ये अकल उसकी कायम मुझे की मान नहीं सकते हैं वो क्या राज लेवर ने सब चली तो अलग है वो होशियार है ज्यादा बात नहीं अब खबर है गाँव में कौन कितने ब्राह्मण बस थोड़े ब्राह्मण अच्छू कितने उसमें कोई शक्ति इसलिए कि डरे करके कोई नुकसान दलित कैंसर बहके हुए इसमें समझ कम ये अछूतों का उद्धार नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास संख्या भी नहीं साधन साधन नहीं संख्या नहीं वहां शिक्षा शक्ति हो नहीं इसी तरह काम समाप्त करने का उपाय क्या मैं इसको बैठ रहा हूँ नए नए लोग Thank you.